ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर अधिसूचना जारी, आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। विभिन्न पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज किया। भाजपा ने आज सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के निकट पूर्वांचल सम्मान मार्च का आयोजन किया। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में लौटने पर आरडब्ल्यूए को निजी सुरक्षा गार्ड रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया और दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त रविन्द्र यादव ने कहा कि गणतंत्र दिवस और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगले एक महीने तक दिल्ली पुलिस के प्रत्येक अधिकारी को राजधानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान देना होगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। विकसित भारत के लक्ष्य को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि वे वर्ष 2047 तक पानी, शौचालय और बिजली सहित सभी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। श्री मोदी ने ये विचार प्रमुख उद्यमी निखिल कामत को दिए एक साक्षात्कार में व्यक्त किए।
मेरा हौसला ज्यादा बुलंद हो चुका, मेरे सपनों का विस्तार हो चुका है, मेरे अरमान बढ़ते चले जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि मुझे 2047 विकसित भारत मतलब की भाषण नहीं है जी। टॉयलेट 100% हो जाना चाहिए, बिजली 100% होनी चाहिए, नल से जल 100% हो जाना चाहिए, सामान्य मानवी को 100% डिलीवरी होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वे जानबूझकर कुछ भी गलत नहीं करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति में सफल होने के लिए व्यक्ति को समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा के प्रति हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि अच्छे लोगों को सिर्फ महत्वाकांक्षा के लिए नहीं बल्कि एक मिशन के साथ राजनीति में आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बेहतर राजनीतिज्ञ को अच्छा वक्ता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति निर्माण में शामिल व्यक्ति बड़े बदलाव ला सकता है, जो शासन प्रणाली में होने का सबसे बड़ा लाभ है। आज के विश्व में सोशल मीडिया के महत्व को उजागर करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह लोकतंत्र और इसके सशक्तिकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा विद्यार्थी अब सोशल मीडिया से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और विभिन्न मुद्दों में रुचि ले रहे हैं। वर्तमान चुनौतियों के बारे में पूछे गए सवाल का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व भारत पर इसलिए भरोसा करता है क्योंकि उसका दृष्टिकोण निष्पक्ष है। श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक संकट के दौरान भारत ने बार बार ये कहा है कि वह शांति के पक्ष में है। करीब 2 घंटे के साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने अपनी जीवन यात्रा, शिक्षा, राजनीतिक करियर, प्रबंधन कौशल और अन्य पहलुओं पर चर्चा की। दिल्ली विधानसभा चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही 70 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17 जनवरी तक उम्मीदवार अपना नामांकन भर सकते हैं। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 जनवरी है। मतदान 5 फरवरी और मतगणना 8 फरवरी को होगी। आज नामांकन के पहले दिन कुल 9 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन की प्रक्रिया इस महीने की 17 तारीख तक चलेगी और 20 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राजधानी की सभी 70 सीटों के लिए अगले महीने की 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे।
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 जनवरी है। मतदान 5 फरवरी और मतगणना 8 फरवरी को होगी। दिल्ली में 83 लाख से अधिक पुरुष और 71 लाख से अधिक महिला मतदाताओं को मिलाकर कुल 1,55,00,000 से अधिक मतदाता हैं। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी है। वहीं भाजपा ने अब तक अपने 29 उम्मीदवारों और कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की घोषणा की है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
दिल्ली में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद से शहर में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसे देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 17,000 से ज्यादा होर्डिंग्स और 90,000 से ज्यादा पोस्टर हटाए हैं। निगम ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में लगे 11,000 से ज्यादा झंडे और 4,500 से अधिक साइनेज बोर्ड भी हटाए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक राजधानी स्थित पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं के भाग लेने की संभावना है। गौरतलब है कि भाजपा ने अब तक 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए 29 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस बैठक के बाद शेष बचे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा किए जाने की संभावना है। इससे पहले आज दिन में श्री नड्डा के आवास पर भी पार्टी नेताओं की एक बैठक हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भाजपा ने आज सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के पास पूर्वांचल सम्मान मार्च नाम से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान श्री तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों का अनादर करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल और उनकी पार्टी के वायदे फर्जी हैं। श्री तिवारी ने कहा कि पूर्वांचल के लोग 5 फरवरी को इसका बदला लेंगे।
और आम आदमी पार्टी का एक पुराना इतिहास रहा है प्रवासी लोगों का अपमान करने का। आप उन कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले पूर्वांचलियों को शायद इसीलिए आज तक साफ पानी नहीं दे पाए। आपने जो ये दुस्साहस किया है ना, आपको 5 फरवरी को इसका जवाब मिलेगा।
कांग्रेस ने दिल्ली में अपनी सरकार बनने पर महाकुंभ की तर्ज पर छठ महापर्व मनाए जाने की घोषणा की। एक संवाददाता सम्मेलन में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजधानी में छठ पूजा के लिए एक बहुत बड़ा स्थान यमुना किनारे निर्धारित करके उसे जिला घोषित किया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि पूर्वांचल के लोगों का दिल्ली के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। अगले महीने की 5 तारीख को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर शहर के विभिन्न भागों में राजनीतिक गतिविधियां धीरे धीरे तेज हो रही हैं। आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न दलों के नेता और प्रत्याशी प्रचार अभियान में जुटने लगे हैं। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने डोर टू डोर कैंपेन किया। भाजपा के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा भी नुक्कड़ सभा कर अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने मंदिर मार्ग और अन्य क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। शहर के मालवीय नगर क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती और भाजपा प्रत्याशी सतीश उपाध्याय ने भी जनसंपर्क अभियान चलाया। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने चुनाव अभियान को गति देने के लिए क्षेत्र में अपना चुनाव कार्यालय खोला। इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी रमेश बिदुड़ी भी गोविंदपुरी और अन्य क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से मिले। रजौरी गार्डन से भाजपा प्रत्याशी मंजिंदर सिंह सिरसा ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया। शकूर बस्ती से आप प्रत्याशी सत्येंद्र जैन ने रानीबाग क्षेत्र में मतदाताओं के बीच जाकर अपनी बात रखी। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी कैलाश गहलोत, माधीपुर से आप प्रत्याशी राखी बिडलान और कांग्रेस प्रत्याशी हारून यूसुफ सहित अन्य प्रत्याशियों ने भी जनसंपर्क अभियान चलाया। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी विशेष श्रृंखला में आकाशवाणी समाचार शहर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों पर खास रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है। पेश है इस श्रृंखला में मालवीय नगर विधानसभा सीट पर हमारे संवाददाता सकलन अख्तर की एक रिपोर्ट।
दिल्ली की मालवीय नगर विधानसभा सीट शहर की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती 2013 से लगातार इस सीट पर जीतते आ रहे हैं और पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। वहीं भाजपा ने इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को मैदान में उतारा है। दूसरी ओर कांग्रेस ने जितेंद्र कुमार कोचर को अपना उम्मीदवार बनाया है। दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र की इस सीट पर 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में सोमनाथ भारती ने भाजपा के शैलेंद्र सिंह को 18,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। 1.5 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाली इस सीट पर मिश्रित आबादी की वजह से यहां पर किसी एक जाति या समाज का वर्चस्व नहीं है, लेकिन पंजाबी और मुस्लिम आबादी जरूर चुनाव को प्रभावित करने में सक्षम है। इस बार चुनाव में पानी की निकासी, पार्किंग और साफ सफाई जैसे स्थानीय मुद्दे लोगों के बीच प्रमुखता से अपनी जगह बना रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सोमनाथ भारती मालवीय नगर सीट पर जीत का चौका लगा पाएंगे या मालवीय नगर की जनता इस बार बदलाव लाएगी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में उनकी पार्टी के सत्ता में लौटने पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA को निजी सुरक्षा गार्ड रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों की सुरक्षा आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। श्री केजरीवाल ने कहा कि RWA को अपने अपने इलाकों में सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से उचित राशि दी जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर दिल्ली में अपराध रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं।
आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितनी RWAs हैं उनको अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से उचित राशि दी जाएगी। इसके कुछ मापदंड बना लेंगे कि किस RWA को कितने सिक्योरिटी गार्ड का पैसा देना है, कितना पैसा देना है, एरिया के हिसाब से होगा या नंबर ऑफ फैमिलीज के हिसाब से होगा, उसका एक मापदंड बना लेंगे।
आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के संदर्भ में दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त कानून और व्यवस्था रविंद्र यादव ने कहा कि गणतंत्र दिवस और विधानसभा चुनाव दोनों ही मानव संसाधन की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगले एक महीने तक दिल्ली पुलिस के प्रत्येक अधिकारी को राजधानी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में योगदान देना होगा। श्री यादव ने कहा कि दिल्ली पुलिस इसके लिए पूरी तरह सक्षम है।
चुनौती सिर्फ यह है कि दोनों चीज एक साथ है और दोनों मैन पावर इंटेंसिव है। चुनाव में हम लोग बॉर्डर को सील करते हैं और कोई जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेशन होने वाली या कोई सांगे अपराध ना हो, साथ ही जो 26 जनवरी है वो भी मैन पावर इंटेंसिव है। तो वो सारे चैलेंजेस को देखते हुए मुझे ये लगता है कि दिल्ली पुलिस के लिए काफी चैलेंज है।
शहर के गोविंदपुरी पुलिस थाने के सर्विलेंस कक्ष में आज आग लग गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली दमकल विभाग के अनुसार यह आग दोपहर 1:30 बजे लगी। उन्होंने बताया कि दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आधे घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया। दिल्ली पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों में बम की धमकी देने के आरोप में 12वीं कक्षा के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार छात्र ने अलग अलग स्कूलों को 23 धमकी भरे ईमेल भेजे थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया। आकाशवाणी का कुंभवाणी चैनल 26 फरवरी तक सुबह 5:55 से रात 10:05 तक 103.5 MHz फ्रीक्वेंसी न्यूज ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर सुना जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकारी योजनाओं का 100% लाभ लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर अधिसूचना जारी, आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। भाजपा ने आज सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के पास पूर्वांचल सम्मान मार्च का आयोजन किया। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में लौटने पर RWA को निजी सुरक्षा गार्ड रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया और दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त रविंद्र यादव ने कहा कि गणतंत्र दिवस और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगले एक महीने तक दिल्ली पुलिस के प्रत्येक अधिकारी को सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान देना होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।